नमस्कार मित्रगण, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। तो आइए हर रविवार की तरह अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं, जिसका नाम है पठामि संस्कृतम। इसे मैं लीना महेंदड़े कौशलम न्यास के लिए प्रस्तुत करती हूँ। मित्रों, हम विगत कुछ रविवारों से महाकवि पंडित जयदेव द्वारा रचित दशावतार काव्य का पठन कर रहे हैं, जिसमें हमने केशव के या विष्णु के पहले 5 अवतारों के विषय में कथाएं समझी और पंडित जयदेव द्वारा किया गया मधुर काव्यमय वर्णन भी सुना। तो आज हम चलते हैं अगले अवतार की कथा पर। पंडित जयदेव लिखते हैं, क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो मित्रों, आइए हम इस परशुराम अवतार की कथा को भी सुनते हैं। एक प्रकार से कहें तो दशावतार की कथा से यह समझना पड़ेगा कि प्राचीन काल में मनुष्य का चलन कैसा रहा और समाज व्यवस्था कैसे कैसे सुधरी, समृद्ध हुई, सुसंस्कृत हुई। अत्यंत प्राचीन काल में महाभयंकर असुरों का प्राबल्य जब था, तब पृथ्वी पर मनुष्यों को असुरों के अत्याचार से बचाने के लिए विष्णु ने समय समय पर अवतार लिए और हमने देखा कि वराह अवतार में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह के अवतार में हिरण्यकशिपु का वध किया। इसी प्रकार वामन के अवतार में दैत्यराज बलि को उन्होंने पाताल में भेज दिया। इस प्रकार पृथ्वी पर से दुष्ट असुरों का तो नाश हो गया, लेकिन समाज व्यवस्था चलाने के लिए किसी न किसी नियामक की या नियंत्रक की आवश्यकता होती है। तो प्राचीन काल में यह काम क्षत्रियों पर आ पड़ा, जो राज्य संभाला करते थे और राज सत्ता के कारण एक ओर लोगों का परिरक्षण और दूसरी ओर उनकी समृद्धि दोनों के प्रति उत्तरदायी थे। लेकिन संस्कृति के आरंभिक काल में कई बार ऐसा भी हुआ है कि अपने अधिकार के कारण और अपनी सत्ता के कारण क्षत्रिय मदोन्मत्त हो गए और वे भी लोगों पर अत्याचार करने लगे। ऐसी ही एक कथा का संबंध परशुराम के अवतार से है। परशुराम की कथा यूं है कि वे जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे और परशुराम को ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियोचित शौर्य और वीरता प्राप्त थी। तो बाल्यावस्था में ही परशुराम हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की तपश्चर्या करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें असुरों का वध करने के लिए कहा। परशुराम में अपार शक्ति तो थी ही, अतः उन्होंने अविलंब उन असुरों का विनाश किया। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें धनुर्वेद सिखाया और कई तरह के दिव्यास्त्र उन्हें भेंट स्वरूप दिए और एक दिव्य परशु अर्थात फरसा भी दिया, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। इस प्रकार अपना मंतव्य पूरा करके परशुराम अपने पिता के आश्रम में वापस लौटे। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में साक्षात कामधेनु गाय निवास करती थी। वह संसार की सारी समृद्धियाँ और वस्तुएँ प्रदान कर सकती थी। आगे कथा यूँ है कि उन दिनों महिष्मति का सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन नामक महापराक्रमी राजा हुआ करता था। वह अत्यंत बलशाली था। उसने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करके उनसे 2 वरदान लिए थे। एक तो युद्ध में अपराजित रहने का वरदान और दूसरा कि उसके पास सहस्र हाथ थे, इसीलिए उसका नाम सहस्रबाहु अर्जुन भी पड़ा। तो इस प्रकार वर पाकर के सहस्रबाहु अर्जुन अत्यंत मदोन्मत्त हो चला था। एक बार किसी युद्ध से जीत करके जब वह वापस लौट रहा था तो रास्ते में विश्राम के लिए उसे जमदग्नि ऋषि के आश्रम में रुकना पड़ा। उस समय परशुराम वहाँ उपस्थित नहीं थे। कार्तवीर्य अर्जुन की विशाल सेना और वह स्वयं इतने अधिक लोगों का आदरातिथ्य करने के लिए जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु से कहा और कामधेनु ने भी तत्काल अनेकानेक दिव्य व्यंजन निर्माण करके राजा के आदर आतिथ्य की व्यवस्था की। इस बात पर कार्तवीर्य अर्जुन को लगा कि महर्षि जमदग्नि वनचर हैं, वन में निवास करते हैं, ऋषि हैं, केवल ज्ञान साधना में ही लगे रहते हैं, फिर भी इनके पास ऐसा ऐश्वर्य है जो मेरे पास नहीं है। इन ऋषि को इस कामधेनु गाय से क्या मतलब, यह गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। यह सोच करके कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे बलपूर्वक कामधेनु को उठाकर अपने राज्य में ले चलें। इस प्रकार कार्तवीर्य ने जब कामधेनु का हरण किया तब उसे रोकने वाला वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही परशुराम वापस लौटे तो उन्होंने तत्काल कार्तवीर्य अर्जुन का पीछा किया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। कार्तवीर्य अर्जुन की विशाल सेना थी, वह स्वयं भी वीर था, युद्ध में अपराजेय रहने का वरदान उसे मिला था। इन सब बातों के कारण उसका अहंकार बहुत ही अधिक बढ़ चुका था, लेकिन परशुराम भी अति सामर्थ्यवान और वीर योद्धा थे, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे, उनका परशु भी दिव्य ही था। तो इस प्रकार युद्ध में परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन की सारी 1000 भुजाएं काट दीं और उसका वध करके कामधेनु को उसके चंगुल से छुड़ा करके आश्रम वापस लौटे। इस पर जमदग्नि ने उन्हें कहा कि क्षत्रिय राजा भले ही अहंकारी हो, लेकिन चूंकि वह समाज व्यवस्था चलाता है तो तुम्हें कार्तवीर्य अर्जुन का वध नहीं करना चाहिए था, तुम कहीं जाकर तपश्चर्या करो। इस प्रकार परशुराम पुनः एक बार आश्रम से अलग कहीं दूर तपश्चर्या करने के लिए चले गए, लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए जमदग्नि ऋषि तथा आश्रमवासी सारे ही निहत्थे निरीह शिष्यों का उन्होंने वध कर दिया। जब परशुराम को इस घटना का पता चला तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने कहा कि अपनी राज सत्ता के कारण क्षत्रिय इस प्रकार मदोन्मत्त हो गए हैं कि वे निरीह और निशस्त्र लोगों का भी संहार करने लगे हैं, ज्ञानी ऋषि मुनियों को भी नहीं पहचानते और नहीं छोड़ते, तो ऐसे क्षत्रियों का विनाश ही उचित है। तब परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्ति दिलाने का निश्चय करते हुए कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों का वध किया। इतना ही नहीं, उस युद्ध में लड़ने के लिए आए हुए सारे ही क्षत्रियों का विनाश करके एक तरह से पृथ्वी को निःक्षत्रिय कर दिया। लेकिन इस युद्ध में स्त्रियां अवध्य ही थीं, तो जो गर्भवती क्षत्रिय स्त्रियाएं थीं उनकी प्रजा फिर से क्षत्रिय हुई और इस प्रकार पुनः एक बार क्षत्रियों का राज्य पृथ्वी पर आने लगा, तो परशुराम ने उनका भी विनाश कर दिया। इस प्रकार कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को निःक्षत्रिय कर दिया और पृथ्वी को एक तरह से क्षत्रियों के रुधिर से नहलाकर क्षत्रियों के अत्याचार से पृथ्वी को छुटकारा दिलाया। अंततः उनके दादा अर्थात जमदग्नि के पिता स्वयं उनके सामने उपस्थित हुए और उनसे कहा कि अब तुम्हारा यह संकल्प छोड़ दो और तुमने जो पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया है वह कोई खुद राज करने के लिए नहीं किया है, तो आगे यही उचित होगा कि तुम इसे किसी सुपात्र व्यक्ति को दान कर दो और वह जैसी भी समाज व्यवस्था बनाए तुम दोबारा उसमें हस्तक्षेप मत करना। तब परशुराम ने सारी पृथ्वी को कश्यप ऋषि को दान कर दिया और समुद्र से अपने रहने लायक थोड़ी सी भूमि की मांग की और महेंद्र पर्वत पर चढ़ करके अपना एक बाण छोड़ा और वह बाण जितनी दूर तक गया उतनी दूर तक की जमीन समुद्र ने उनके लिए छोड़ दी, जो आधुनिक कोंकण के नाम से जाना जाता है। तो यह तो कथा हुई परशुराम की। जयदेव ने इस घटना का वर्णन अपनी अष्टपदी में किस प्रकार किया है इसे देखते हैं। क्षत्रिय रुधिर मये, तो रुधिर का अर्थ हुआ रक्त, तो क्षत्रियों के रुधिर से पृथ्वी का जल रुधिरमय हो गया था। इस प्रकार परशुराम ने क्षत्रियों का रक्त बहा करके उनके अहंकार और अत्याचार से पृथ्वी को मुक्ति दिलाई। और जगत अपगत पापम, यह जगत क्षत्रियों के पापों से मुक्त हुआ। स्नपयसी पयसी, तो पय अर्थात पानी और स्नपयसी अर्थात तुमने स्नान करवाया। तो तुमने पृथ्वी को ऐसे पानी से स्नान करवाया जो क्षत्रियों के रुधिर से युक्त था, और इस प्रकार तुमने पृथ्वी के ऊपर क्षत्रियों द्वारा जो अहंकारवश अत्याचार हो रहे थे उसका शमन किया, और इस प्रकार शमित यह पृथ्वी हुई और पापों से अपगत पापम अर्थात वह पापों से भी मुक्त हुई। इस प्रकार तुम्हारा अवतार था। तो हे केशव, हे धृत भृगुपति रूप अर्थात हे परशुराम का अवतार धारण करने वाले केशव, हे जगदीश, हे हरे, तुम्हारी जय हो। और यहाँ भृगुपति इसलिए कहा गया है कि परशुराम स्वयं भृगु ऋषि के प्रपौत्र थे, परपोता थे, और भृगु के वंशजों में श्रेष्ठ होने के नाते उन्हें भृगुपति संज्ञा से संबोधित किया गया है। तो भृगुपति का अवतार धारण करने वाले केशव, तुम्हारी जय हो। इस प्रकार से जयदेव ने इस अवतार का वर्णन किया है। तो मित्रों, दशावतार में से छठे अवतार की इस कथा के साथ हम आज का पठामी संस्कृतम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।